नमस्कार, भारत 28 अगस्त दिन रविवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। कश्मीर मुद्दे पर 22 विशेष दूत नियुक्त करने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया।
22 सांसदों को पूरे विश्व में भेजना पड़ रहा है कश्मीर के विषय को लेकर, ये दिखाता है कि किस प्रकार का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है।
क्या कहते हैं दोनों तरफ के विश्लेषक, ये भी जानेंगे और लेकर चलेंगे आपको बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच भी।
इतवार आदमी जिंदगी भर की लेते हैं।
खबरें होंगी खेल की भी और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, अमर शर्मा से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत प्रशासित कश्मीर में हो रहे कथित अत्याचार और मानवाधिकार हनन के मुद्दे को दुनिया के अलग अलग मंचों पर सामने लाने के लिए 22 सांसदों को विशेष दूत नामित किया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र को कश्मीरी लोगों के स्वनिर्णय का अधिकार देने के पुराने वायदे की याद दिलाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल दिल्ली में मुलाकात कर घाटी के हालात पर चर्चा की है। मुफ्ती ने कहा है कि मोदी जी के पास 2/3 बहुमत है, अगर उनके रहते कश्मीर में कुछ नहीं होता तो कभी कुछ नहीं होगा। सीरिया की सेना ने कहा है कि दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित दराया के शहर से सभी विद्रोही बाहर निकल गए हैं। कल बचे खुचे विद्रोहियों को लेकर बसें शहर से रवाना हुई। ये बसें विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इदलिब प्रांत की तरफ जा रही हैं। दराया पर अब सरकार ने पूरे नियंत्रण का दावा किया है। विद्रोहियों ने छोटे हथियारों को छोड़कर बाकी सभी हथियार सेना को सौंप दिए हैं। खबरें हैं कि एलेपो में हुए बम धमाकों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नजर रखने वाले संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बम एक टेंट के नजदीक गिरा, जहां ऐसे ही एक हमले में मारे गए लोगों के परिजन शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। इलाके में रहने वाले जैदान अल जैदान ने बताया,
तकरीबन 20
लोग शहीद हुए हैं और 15 लोग घायल हुए हैं। शहीदों में ज्यादातर बच्चे, महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। सेना के लिए कोई सीमा तय नहीं है। ये थे जैदान के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तरी सीरिया की सीमा पर कुर्द लड़ाकों से लड़ाई में तुर्की के एक सैनिक की मौत हो गई है। तुर्की के सैनिक की मौत का ये पहला मामला है। लड़ाई जराबलूच शहर के नजदीक जारी है। उधर तुर्की के नजदीकी शहर दियार बाकिर में हवाई अड्डे में आग लग गई। एक पुलिस नाका और VIP लॉन्च पर 4 रॉकेट दागे गए। मुसाफिरों और कर्मचारियों एयरपोर्टों के अंदर ले जाए गए। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है। स्पेन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक देशव्यापी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चीनी नागरिकों के काम करने के परमिट को अवैध रूप से नियमित करवाता था। पुलिस ने अलग अलग शहरों से 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है ये गिरोह इस योजना में शामिल चीनी नागरिकों को रिहायशी परमिट बनवाने के लिए घरेलू कामगारों के रूप में कार्य करने वाला नकली प्रमाण पत्र देता था और इसके लिए करीब 6 लाख रुपए लेता था। इन अवैध रिहायशी परमिट के जरिए वे बार्सिलोना के कपड़ा उद्योग में काम करते थे। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति जैकब जूमा के करीबी माने जाने वाले भारतीय मूल के बड़े कारोबारी गुप्ता परिवार ने वहां सभी व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। एक बयान में गुप्ता परिवार ने कहा है कि साल के आखिर तक वो अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम पूरा कर लेंगे। BBC समाचार।
BBC की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने देश के 22 सांसदों का एक ऐसा दल बनाया जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर कश्मीर के हालात की तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। ये ऐलान ठीक उस दिन हुआ जब भारत प्रशासित कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। नवाज शरीफ ने जहां अगले महीने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने की बात कही, वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को भड़काना बंद करे। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर पर पुराने वायदे की याद दिलाएंगे। नवाज शरीफ के कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए 22 सांसदों को विशेष दूत बनाया है। बयान के मुताबिक कश्मीर की लड़ाई को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने वाले इन सांसदों को सरकार का समर्थन हासिल है। शरीफ ने कहा है कि वो इनके साथ खड़े हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते करीब 50 दिन से अशांति की स्थिति है। चरमपंथी बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से कश्मीर घाटी में प्रदर्शनों का दौर जारी है और कर्फ्यू लागू है। बुरहान वानी की मौत के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने अपने जश्न आज़ादी को भी कश्मीर के नाम किया था। भारत ने पाकिस्तान के इस रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। नवाज शरीफ के ताज़ा बयान पर भी भारत के राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान के रुख से साफ है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पड़ गया है।
22 सांसदों को पूरे विश्व में भेजना पड़ रहा है कश्मीर के विषय को लेकर, ये दिखाता है कि किस प्रकार का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। राहिल शरीफ का जो एक पूरा मसला रहा था नवाज शरीफ को लेकर, किस प्रकार पूरे पाकिस्तान में पोस्टर्स लगे थे कि राहिल शरीफ लाओ, नवाज शरीफ हटाओ, उसके बाद भी नवाज शरीफ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहा है कि वो डीप स्टेट अर्थात ISIS और आर्मी के मसलों को उठाए, और शायद उसी का नतीजा है कि काफी प्रेशर के अंडर नवाज शरीफ काम कर रहे हैं।
वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के रुख की आलोचना की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा,
बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान को आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि जो उनके मुल्क में जो दहशतगर्दी का माहौल है, ये सब उन दहशतगर्दों को, उन सांपों को दूध पिलाने का नतीजा है जिनको पाकिस्तान ने प्रोत्साहित किया है।
उधर कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बातचीत बहाली की कोशिश को बार बार गंवाया है और कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा,
मोदी जी ने न सिर्फ पहले नवाज शरीफ साहब को अपनी ओट सेरेमनी में बुलाया बल्कि खुद लाहौर चले गए, पर बदकिस्मती के साथ उसके बाद पठानकोट हुआ, और अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो, तो ऐसे में हमारे होम मिनिस्टर दोबारा पाकिस्तान चले गए साक का जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए, पर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने फिर एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया।
कश्मीर मुद्दे पर भारत के सभी दल एक सुर में पाकिस्तान के रुख की आलोचना में जुटे हैं। भारत कश्मीर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान की पेशकश को भी शर्तों के आधार पर खारिज कर चुका है। पाकिस्तान के ताज़ा रुख के बाद साफ है कि फिलहाल दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।
ये थे फैसल मोहम्मद अली। भारत प्रशासित कश्मीर में जब से अशांति शुरू हुई है, मौजूदा शांति, तब से पाकिस्तान ने इसे विभिन्न मंचों पर उठाने की कोशिश की है, चाहे वो अमेरिका हो, संयुक्त राष्ट्र हो या फिर मुसलमान देशों का संगठन OIC। अब कश्मीर मुद्दे को लेकर 22 विशेष दूत नियुक्त करके नवाज शरीफ क्या हासिल करना चाहते हैं, यही सवाल किया हमारे साथी वात्सल्य राय ने पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर से।
कश्मीर का मसला जो है ये एक बार फिर जैसे वक्तन फवक्तन होता रहता है एक दफा फिर उठा है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी हिस्सा है कश्मीर का उसमें हालात ठीक नहीं है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस प्रेशर में होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या दुनिया को बता रहे हैं। तो ये उन्होंने 22 रुकनी कमेटी जो है ये इसका ऐलान किया है। अब इसका असर क्या होता है ये अलहदा बात है, और वो जो कैपिटल्स जिनमें जाना है वो इनकी बात कितनी गौर से सुनते हैं वो बिल्कुल अलग बात है।
एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार भारत को बातचीत के लिए इनविटेशन देता है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो अपने 22 सांसदों को भेजता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो इन दो कदमों को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, वो हिंदुस्तान के साथ जो है बातचीत वो तो कश्मीर पे बन नहीं रही, और हिंदुस्तान का तो अब तकरीबन ये मौकफ स्टैंड हो गया है कि हमने पाकिस्तान के साथ कश्मीर को सेंटर में रख के बात करनी नहीं, वो तो अब तकरीबन तय लगती है हिंदुस्तानी पॉलिसी। जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी शिमला में 1972 में, वो कश्मीर के हालात के पेश नजर तकरीबन ब्रेक डाउन हो गई है, क्योंकि उसमें तो ये था कि बायलैटरली बात की जाएगी, दो तरफा बात की जाएगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अब हिंदुस्तान तो बिल्कुल उसके लिए तैयार है ही नहीं, और कश्मीर पे बात करने मतलब वो तो दूर की बात है। हिंदुस्तान के वजीर आजम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की कर रहे हैं, तो ये तो एक मजाक किस्म की चीज है। तो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर पे बात तो अब मुमकिनात में से रही ही नहीं है, वो हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन कश्मीर में एक क्राइसिस वो बहरहाल है, और वो इसलिए क्राइसिस है कि हिंदुस्तान अपना जो कश्मीर उसके जेरे कंट्रोल हिस्सा है उसको मैनेज नहीं कर पा रही। वहां के लोग जो हैं हिंदुस्तान के साथ उनका जो ख्यालात या फीलिंग्स अच्छी नहीं है। अब ये इंडियन प्रॉब्लम है और इंडिया सॉल्व करने से फेल हो गया है, तो पाकिस्तान जो है फिर दुनिया को बताएगा ये है वो है, और ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है जैसे फलस्तीन में होता है, इसराइल करता है।
ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ खुद कई परेशानियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वो कश्मीर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। इस बात में कितना आपको दम नजर आता है?
ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो हालात पैदा हो रहे हैं कश्मीर में वो पाकिस्तान ने नहीं पैदा किए, ये तो आपका खालिस्तन इंटरनल फेलियर है कश्मीर में। कश्मीरी वहां पे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जो आपके हिमायती लोग हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, उन जैसे लोग वो भी कहते हैं भाई इंडियन पॉलिसी वहां पे नाकाम रही है, पाकिस्तान पे हाँ इल्जाम हिंदुस्तानी हुकूमत लगाती रहेगी कि वो ये कर रही है ये कर रही है, पर ये वहां पे हिंदुस्तान का अपना फेलियर है।
पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर कह रहे थे कि भारत प्रशासित कश्मीर के हालात को संभाल नहीं पा रही है भारत की सरकार, लेकिन भारत इन हालात के लिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाले कथित हस्तक्षेप को जिम्मेदार मानता है। हमारे साथी वात्सल्य राय ने बात की पूर्व भारतीय राजनयिक विवेक काटजू से और पूछा कि क्या 22 दूत नियुक्त करने के पाकिस्तान के कदम का कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा।
मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष असर होगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं चाहता, उससे वो घबराता है, और भारत भी की नीति है कि जितने भी पाकिस्तान के साथ मुश्किलें हैं, जितने प्रॉब्लम हैं, सबका समाधान बातचीत के जरिए हो। बातचीत के लिए एक ठीक माहौल बनाना पड़ता है, और आतंकवाद जब तक समाप्त नहीं होगा पाकिस्तान से जो चल रहा है, तब तक माहौल ठीक नहीं होगा बातचीत के। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है जम्मू कश्मीर राज्य के मामलों में, और वो हस्तक्षेप भी उसको बंद करना है। ये जो सेनेटर हैं ये जाएंगे, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना पाकिस्तान की हमेशा से नीति रही है और प्रयत्न रहा है, तो उसी नीति का ये कड़ी है। ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान ने जितने भी अभी तक प्रयत्न किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कश्मीर पर फोकस करवाने के लिए, वो असफल रहे। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि जो ये कदम अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं वो भी उतना ही असफल रहेगा जितना अभी तक उनके प्रयत्न रहे।
कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पाकिस्तान की जो कोशिश है, क्या कहीं उसमें भारत ने जिस तरह से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, गिलगित का मुद्दा उठाया, वो एक वजह आप देखते हैं क्या?
देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और गिलगित है वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा ही है, उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, और भारत जम्मू कश्मीर का राज्य जो कि 1947 में था वो भारत के संविधान के तहत भारत का एक राज्य है, इसलिए भारत को पूरा अधिकार है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विषय वो उठाए। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, वहां पर भारत ने यही मुझे लगता है संकेत देने की कोशिश की है पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि पाकिस्तान का जो मानव अधिकार रिकॉर्ड रहा है बलूचिस्तान में वो इतना खराब रहा है कि उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी और देश के मानव अधिकार रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें।
ये थे भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू और उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जहां शहरों में कई मोहल्ले पानी में डूबे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों की हालत भी बेहद खराब है। फसलें तो पहले ही पानी में बह गईं, कई तरह की और दिक्कतों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो चारों ओर से पानी से घिर गए हैं और वहां जाने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा है। इलाहाबाद के झूंसी के पास एक ऐसे ही गाँव में समीर आत्मज मिश्र भी पहुंचे और वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी।
ये इलाहाबाद के झूंसी इलाके का बद्रा सुनौटी गांव है। ये पिछले 15 दिनों से जब से बाढ़ आई है, इसका संपर्क पूरी तरह से जमीन से कट गया है। चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। यहाँ के गांव वालों को शहर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाव का सहारा है। अभी इस नाव तुरंत चली है, करीब इसमें 15-20 लोग गांव के हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं जिनको भी गांव से आना जाना हो रहा है। यहां कितनी नावें चल रही हैं?
नाव तो चल रही हैं 4-6 नाव।
कितना बड़ा है गांव?
कम से कम 5,000 की आबादी है।
जो गांव के लोग हैं,
हाँ,
तो वहाँ अंदर कुछ व्यवस्था है कि नहीं?
कोई व्यवस्था नहीं है।
हॉस्पिटल, दवाई दुकान?
ना ना, स्कूल है बस, स्कूल है ना, अस्पताल है, और कोई व्यवस्था नहीं है।
अब इसी नाव से साहब किसी तरह से ले जावा जाता है, और का?
अच्छा, कोई नहीं रास्ता है नहीं, या ये बाढ़ में कट गया है?
बाढ़ में बंद है इस रास्ता, रोड तो है लेकिन बाढ़ में बंद है।
नाव जब इस पार आ जाती है तो जब तक पूरी भर नहीं जाती वो चलती नहीं। कितने बार आप लोग आ जाते होंगे?
अरे हमेशा अब तो जाते, चाहे बार दो बार आने जाना है। एक बार गए अब जाम तो संझा हो जात बा, अब सुबह का गा ही वही लौटे थे 2 बजे हो।
कई बार इसे लेकर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं।
अरे यार भाई, नियम हम काम करा
कौन नियम है बताओ तो?
वोट आई जाए तब हम जाए, क्योंकि दूठ हुआ है यहाँ, एक रहना जरूरी बा।
दरअसल बद्रा सुनौटी गांव हर दूसरे तीसरे साल टापू में बदल जाता है, क्योंकि जरा सा पानी बढ़ा नहीं कि सड़क डूब जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। यहां तक कि बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी सारा दिन बिता देना पड़ता है, और अगर किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो उसे बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। संजय यादव इस गाँव के प्रधान है।
सरकारी डॉक्टर सर बाढ़ में लगाए गए थे, उस पार गए थे 1-2 दिन, इस पार भी बैठे हुए हैं, दवा ववा वितरण किए हैं, और अधिक समस्या जैसे हार्ट हुआ या अचानक गंभीर तबीयत हुई तो ये जो डॉक्टर जाते हैं इनके पास वो दवा उपलब्ध नहीं रहती है, तो उनको अच्छा। बाहर ले जाना पड़ता है शहर से या झूंसी।
नाव में मेरे साथ बैठे गांव के लोगों का कहना था कि पिछले करीब 2 हफ्ते से बिजली काट दी गई है। हर साल बाढ़ में ऐसा ही होता है, लेकिन बिजली का बिल पूरा आता है।
बिजली सर जब से कटी हुई है बिल, उसमें हर जब जब बाढ़ आती है पूरा उसमें बिल जुड़ कर आता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती है, गरीबों की समस्या बनी रहती है।
लोगों की मांग है कि यदि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बना दिया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है।
इनका इंतजाम सर अब तो भी नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था मांग की गई है, और विधायक सांसद बहुत भी आए गए बताए पुल बनवा देंगे, ये समय हल करें, लेकिन कोई भी हल निराकरण नहीं हुआ।
लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि शायद चुनावी साल में रास्ते और पुल के बारे में कोई ठोस आश्वासन मिल जाए, तुरंत बन जाने की उम्मीद तो अभी भी नहीं है। समीर आत्मज मिश्र, BBC झूंसी इलाहाबाद।
और उधर बिहार के कई इलाकों में भी बाढ़ के कारण हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। भागलपुर में गंगा का पानी नहीं घट रहा है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 34.68 मीटर रिकॉर्ड किया गया। वहां पिछले 7 दिनों के अंदर कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। किस हाल में हैं ये लोग, यही जानने पहुंचे हमारे साथी रवि प्रकाश।
इतवार दिन हम आदमी इधर ही एक कले सर, हम आदमी घर टिक ले तो हमारा कमाई को ना जिंदगी भर की लेते।
अभी आप पिंकी देवी का दर्द सुन रहे थे। पिंकी की उम्र 24 साल है और वे विधवा हो चुकी हैं। उनके पति दिलीप रजक की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। 12 साल पहले मात्र 12 साल की उम्र में उनका ब्याह दिलीप से हुआ था। अब उनकी गोद में 1.5 साल की बेटी है और सामने पहाड़ से जिंदगी। उनसे मेरी मुलाकात सबौर हाई स्कूल के राहत शिविर में हुई। बगल में बैठी उनकी सास देवकी देवी ने बताया कि अब उनके घर में कोई भी कमाऊ पुरुष नहीं है। उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी है, अब एकमात्र कमाऊ पुत्र भी नहीं रहा। ऊपर से विधवा बहू, उसकी दूध मुही बेटी और 8 साल का बेटा। देवकी देवी कहती हैं,
खबर कर लेके
खसरे तसरे के दिलीप डूब गए डूब गए जैक चूल हम पानी डाली दिल के बस दाग सब मियाद यह कर लो ढकर लो इलिए ढल पर बेटा कोई नहीं बेटा मिल रात भर आखरी कर लिए बाबू ढल है पर बाबू है ब्राक निकल ले खोजल कर।
देवगी देवी सबौर प्रखंड के रजेंदीपुर गांव की है। इसी गांव की फूलन देवी के पति विकलांग हैं, काम करने में सक्षम नहीं। घर बाढ़ के पानी में गिर गया। बेटी शादी योग्य है। उनका 18 साल का बेटा सूरज मजदूरी कर घर चलाता था। गंगा का पानी उनके घर तक पहुंचा तो एक झटके में सूरज भंवर में फंस गया। डूबकर उसकी मौत हो गई। छोटा बेटा 6 साल का है, इतना अबोध कि ठीक से बोल भी नहीं पाता। फूलन देवी की सूजी आंखें कई सवाल करती हैं। रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम कैसे हो उनकी सबसे बड़ी चिंता है। फूलन देवी ने बीबीसी से कहा
कि तारीख डूबा है यार, 6 बजे सांझ में डूबा है, 5 बजे सांझ में निकाला है, 6 बजे फिर सांझ में अगर उकरो सारा रचा है सर, 11 बजे रात के जरा के आया है।
आपके पति क्या करते हैं?
कुछ नहीं सर करते हैं, विकलांग है। हमको घर के यहाँ घर पूरा गिर गया है, कुछ नहीं है घर में।
रजेंदीपुर गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने तीनों परिवारों को 3,000 रुपए की सहायता दी है ताकि वे मृतकों का अंतिम संस्कार कर सकें। सरकार ने घोषणा की थी कि बाढ़ से मौत के स्थिति में हर परिवार को 4,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा किसी को नहीं मिला है। इसे पाने की लंबी प्रक्रिया है। सबौर के इस राहत शिविर के पर्यवेक्षक और प्रखंड कृषि पदाधिकारी उत्तम कुमार सिंह ने बीबीसी से कहा
सब कागजात हुआ, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट हुआ, थाना का होगा, FIR होगा, सब कुछ कागज जमा होगा, उसके बाद पंचायत सेवक उसको वो करके उसको भेजा जाएगा। अभी तो तत्काल 3,000 दिया गया है, वो 4,00,000 का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर आ रहे हैं, उन्हें राहत शिविरों का निरीक्षण करना है। काश वे इस राहत शिविर में भी आते ताकि उन्हें पता चलता कि मुआवजा मिलने में इतने पेच हैं और बाढ़ की इतनी कहानियां हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए सबौर भागलपुर से।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं BBC की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत, और अब कार्यक्रम में समय हो चला है ये जानने का कि अखबारों में आज क्या कुछ छपा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमर शर्मा। तो अमर, आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
जी अशोक, आज अखबारों में दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, सब ने मोदी से जो महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की है, इस खबर को पहली खबर बनाया है अपनी। संडे नवभारत टाइम्स ने अपनी जो पहली लीड में हेडलाइन बनाई है, कश्मीर के हल की मोदी से उम्मीद है। और अमर उजाला ने लिखा है, युवाओं को भड़काना बंद करे पाकिस्तान, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। और इसके साथ ही अमर उजाला अखबारों और तमाम अखबारों ने लिखा है कि कश्मीर पर नवाज के 22 दूत और उसी के नीचे एक रविशंकर और बुरहान वानी के पिता की मुलाकात की तस्वीर लगाई है, और
जो तस्वीर कल श्री श्री रविशंकर ने जारी की थी ट्विटर के माध्यम से।
और उस पर इन्होंने हेडिंग दिया है कि मोदी के विशेष दूत श्री श्री और एक सवालिया निशान लगाया है। इसी अखबार में मुलायम सिंह यादव की कल की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी है कि देश हित में अयोध्या में गोली चलवाई थी, ऐसा मुलायम सिंह यादव ने कल बयान दिया है। अपने ऊपर लिखी किताब के विमोचन के सिलसिले में लखनऊ में उन्होंने ऐसा कहा है, और उन्होंने फिर से एक बार इस मुद्दे को चुनाव आने वाले हैं फिर से उठाने की कोशिश।
कल शायद मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार उन्होंने जो कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था वो भी एक गलती थी। तो ये सब सियासी बयान आते रहेंगे चुनाव होने तक।
लेकिन अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छापी है कि बुलंदशहर हाईवे पर एक और छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, और दिल्ली में एक पिता ने जो अपनी 3 बेटियों को कालकोठरी में छोड़ दिया था मरने के लिए घुटन भरे कमरे में, उसने अपने दरअसल बेटे की भी हत्या की थी। इस खबर को भी लगभग हिंदी के अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। उन्होंने अपने बेटे को मुनक नहर में जिंदा फेंक दिया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बताएं अशोक
जी,
PV सिंधु की खबर संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि वो अपने मेडल जीतने के बाद वो अपने पूजा करने पहुंची हैं मंदिर में। इस खबर को उन्होंने दो अखबारों ने उठाया है।
सचित्र छापा हुआ है, अपने सर पे उन्होंने एक ये कलश नुमा शायद रखा हुआ है, उसको हम देख पा रहे हैं अखबारों में।
हाँ, हैदराबाद में उन्होंने महाकाली टेम्पल में जाके प्रार्थना की है। दैनिक भास्कर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है, बच्चों के लिहाज से और माँ बाप, सभी माँ बाप को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जरूरत से 6 गुना ज्यादा नमक रोजाना खा रहे हैं हमारे बच्चे, ये शीर्षक है। और उन्होंने इस पर बताया कि देश में स्कूल जाने वाले 40% बच्चे हर दिन स्नैक्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और ये उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। इससे उन पर ब्लड प्रेशर का खतरा 25% बढ़ जाता है, उन पर बढ़ने का 50% तक हार्ट अटैक का अंदेशा बढ़ जाता है, और 16% तक स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत चिंतित करने वाली खबर है और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
जी।
आपको वह बताएं, एक और खबर है जो द हिंदू में छपी है पहले पन्ने पर, कि हार्दिक पटेल राजस्थान हाईकोर्ट गए हैं और उन्होंने पुलिस के उस रवैये पर को चैलेंज किया है कि उनको लगभग नज़रबंद किया गया है और बिना किसी कारण के, तो इसको उन्होंने चुनौती दी है हाईकोर्ट में जाकर।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की तमाम समीक्षा के लिए अमर शर्मा। और अब बारी खेल समाचारों की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत के हाथ से कल जीत फिसल गई। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 2 रन बनाने थे, लेकिन इस गेंद पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लपक लिए गए। और क्या कुछ हुआ, जानिए आदेश कुमार गुप्त से।
कल वेस्ट इंडीज ने अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को आखिरी गेंद तक चले संघर्ष में 1 रन से मात दे दी। अब भारत के लिए 2 मैचों की सीरीज को बचाने के लिए आज होने वाले दूसरे और आखिरी मैच को हर हाल में जीतना जरूरी हो गया है। इससे पहले धोनी नाम की पुकार के बीच वेस्ट इंडीज के डेविन ब्रावो ने कल मैच का आखिरी ओवर किया। आखिरी गेंद पर भारत को मैच जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन ब्रावो की स्लो गेंद पर भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्लिप पर खड़े मार्लोन सैमुअल्स को कैच दे बैठे और इसी के साथ भारत केवल 1 रन से मैच हार गया। हालांकि भारत के सामने जीत के लिए 246 रनों जैसा विशाल लक्ष्य था, भारत 4 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना सका। भारत के रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के जमाते हुए 62 रन बनाए, लेकिन सबसे दमदार बल्लेबाजी की KL राहुल ने। उन्होंने अपना पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का शतक जमाते हुए नाबाद 110 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 51 गेंदों पर 12 चौके और 5 छक्के जमाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और KL राहुल के बीच 4th विकेट के लिए 107 रनों की शतकीय साझेदारी भी हुई। भारत अंतिम गेंद पर हारा जरूर, लेकिन 20,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मौजूद 19,000 दर्शकों के लिए पूरा पैसा वसूल मैच रहा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने निर्धारित 20 ओवर 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की ओर से सलामी बल्लेबाज एवन लेविस ने अपने दूसरे ही 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक जमाते हुए पूरे 100 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने केवल 49 गेंदों का सहारा लिया। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के लगाए। लेविस के अलावा उनके जोड़ीदार जॉनसन चार्ल्स ने भी केवल 33 गेंदों पर 6 चौके और 7 छक्के जमाते हुए 79 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी केवल 9.3 ओवर में की। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 3 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कल का मैच बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां पूरे मैच में 489 रन बने। अब देखना है कि भारत आज दूसरे मुकाबले में कैसा प्रदर्शन कर पाता है।
और कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत प्रशासित कश्मीर मुद्दे को दुनिया के अलग अलग मंचों पर उठाने के लिए 22 सांसदों को विशेष दूत नामित किया है। सीरिया की सेना ने कहा है कि दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित दराया के शहर से सभी विद्रोही बाहर निकाल लिए गए हैं। खबरें हैं कि एलोपो में हुए धमाके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। उत्तरी सीरिया की सीमा पर कुर्द लड़ाकों से लड़ाई में तुर्की के एक सैनिक की मौत हो गई है। तुर्की के सैनिक की मौत का यह पहला मामला है। स्पेन की पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक देशव्यापी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चीनी नागरिकों के काम करने के परमिट को अवैध रूप से नियमित करवाता था। BBC समाचार।
और इसी के साथ समय आ गया है आपसे हम विदा लें। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात हो रही है ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए नमस्कार।